आगे चलते हैं जी सूरत फतह पे। अजमत सहाबा में जो इस दफ़ा हमने थीम चूज़ किया था वो है हमीयत जाहिलिया से इनकार, सूरत फतह की रोशनी में। और पारे के शुरू में आपको एक स्लाइड दी थी, इतात का अजर इबादत से ज़्यादा है। थोड़ी सी बात, अब ये जो मैं बातें करने लगी ये पूरी सूरत फतह का खुलासा है, हमीयत जाहिलिया नहीं है। अभी हम सूरत फतह पढ़ने लगे हैं, अल्लाह ताला ने इसमें एक खसूसी नुसरत का जिक्र है। इस सूरत में फतह का लफ्ज़ बहुत दफ़ा है, नुसरत का बहुत है, जुनूद लश्करों का तस्करा बहुत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, 6 साल गुजर गए। मक्का से मोहब्बत बड़ी थी, सहाबा को बुखार तक हुए जुदाई में, उदासी में। अल्लाह ने ख्वाब में नबी को दिखाया कि मैं अपने साथियों के साथ खाना काबा में उम्र अदा कर रहा हूँ। नबी का ख्वाब वही होता है। सहाबा कराम को आपने कहा तैयारी करो, हम उम्रा करेंगे। एक कॉल पे 1400 लोग वो तैयार हुए जिनके दिल खड़े थे, ईमान से लबरेज। मुनाफिक नमा और कमज़ोर लोग नहीं उठे, क्यों? क्योंकि मक्का उस वक़्त कुफार की कस्टडी में था, गैर मुस्लिम मुल्क था, और बग़ैर हथियारों के जाना था क्योंकि अहराम में हथियार नहीं होते। तो जिनके दिल खोटे थे, जिनके दिलों में निफाक का कीड़ा लगा था, वो तो बैठे रहे। और जो सच्चे खरे हर घड़ी हर जगह तैयार, कामरान कामरान, वो चल पड़े। 1400 लोग तैयार हो गए, ना गाड़ियाँ थी, ना बसें थी, ना ट्रेन थी, जो आज चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। ना एसी थे, ना हीटर थे, हदी के जानवर साथ लिए और चल पड़े। रास्ते में गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव, प्यास, सही पसीने आए। कोई रास्ते में रिजॉर्ट थोड़ी थे, कोई रेस्टिंग प्लेसेस थोड़े थे कि ज़रा आप शावर ले लें ना, फ्रेश हो जाए। कुछ भी नहीं, कुछ स्नैकिंग भी नहीं थे कि ये जी आपका रेस्ट एरिया है, इसमें मैकडोनल्ड से लेके हर चीज़ है, आप खा पी लें, कुछ भी नहीं था। और तकलीफ़, गर्मी, पसीने तय कर बिल आखिर हुदैबिया के मुकाम पर पहुँच गए, हरम की हदूद के साथ। और उधर ख़बर पहुँच चुकी थी कि नबी अपने साथ 1400 लोग या लश्कर लेकर आए हैं। रोक दिया कि भई आप हमारे टेरिटरी में कहाँ चल पड़े, ऐसे ही जैसे आप किसी मुल्क में जाएं तो इमिग्रेशन पे रोक लिए जाएं। वो समझते थे ये हमारा है, हमारे बाप दादा का मक्का हरम। अच्छा, आपने हजरत उस्मान गनी, जो आपके घर के बंदे थे, आपके दामाद भी थे और कुरैशी भी थे, उनको एम्बेसडर बनाकर भेजा कि जाइए और बात करिए कि हमारा मकसद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम तो उम्रे के लिए आए हैं, और आप देख लीजिए हम तो अहराम में, और अहराम की हुरमत तो वो सब करते थे। अब जब हज़रत उस्मान वहाँ गए तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने पीछे से खबर मशहूर कर दी कि उन्होंने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया। एक बात, ये खबर इधर पहुँची तो ये ऐसी खबर थी कि उस दौर के रिवाज और कानून के मुताबिक एम्बेसडर का कत्ल एलाने जंग होता था। खुदा ना उस्ताद, आज आपके पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी में जो मौजूद एम्बेसडर है उसको उंगली भी लगा देना, कत्ल तो बड़ी दूर की बात है, तो आपको वहाँ से धमकी आएगी कि हमारी फ़ौजें आ रही हैं, आप तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी ने सहाबा को एक दरख्त के नीचे जमा करके सूरत हाल बताई। दर्द भी है, दुख भी है, और घर का बच्चा, दामाद बेटी का घर जा रहा है, वहाँ साथी बातें तो थी ही नहीं, अल्लाह का दीन प्यारा था। आपने कहा बोलो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हम आए तो नहीं जंग के इरादे से, लेकिन इन्होंने तो हमें वार्निंग दे दी, तो चलिए उस्मान का बदला लेंगे। कहा कैसे लड़ोगे, तीर तलवारें कुछ नहीं, कहा हौसले तो हैं ना। हाथ पे हाथ रख के बैत हुई थी। ये हैं आपके मेरे इस पारे के हीरोज़, असहाबे बैत थे रिजवान। ये हैं रिजवान रदी अल्लाह अन्हु व रदुअन। अल्लाह के नबी ने अपना भी हाथ रखा और उसके ऊपर एक और हाथ रखा, कहा ये उस्मान का हाथ है। सहाबा से ये बैत ले ली, ये बैत अलल मौत थी, क्या मक्का वालों से लड़ेंगे अनलेस वी विल डाई, क्योंकि मौत यकीन नहीं थी, क्योंकि हथियार कोई नहीं थे पास, तो मुक्के वगैरह कितने को मार लेते हैं उनकी तीर तलवारों के मुकाबले में। एक साहबी पीछे नहीं हुआ, ये सब कर करा के फारिग हुए। वो तो तैयार थे कटने को, मरने को, सब कुछ, लेकिन थोड़ी देर में खबर आ गई कि वो खबर झूठी थी। जब खबर झूठी थी तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन सहाबा के इरादों का इम्तिहान हुआ और वो उसमें 100 आउट ऑफ 100 लेके पास हो गए। आपने कहा कि भाई हमारे साथ निगोसिएशन कर लो। सुहैल बिन अमर नाम का एक शख्स और 2-3 उसके साथ थे, वो उधर से कुफर के नुमाइंदे बन के आ गए। हुदैबिया के मुकाम पे उन्होंने एक लंबा लेटर दे दिया, ये है जी शरायत मानी है, उन शर्तों में सबसे कड़वी शर्त जो फौरी इंस्टेंट थी वो कहती अब वापस जाओ। दैट वॉज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। अगले साल आना और 3 दिन रह के कर जाना उमरा, अना का मसला इगोइस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। आप अपने ऊपर लेकर सोचे, जद्दा गवर्नमेंट आपको कहे वापस जाओ अमेरिका, वापस जाओ यूके और वापस जाओ पाकिस्तान, आता है कोई? पिछले चंद साल में कतर और उसके बीच में गड़बड़ थी, कुवैत में, इधर उधर यूएई की कंट्रीज़ में गड़बड़ थी, कितना लोग बोले सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़। दूसरी बात ये, आप वापस जा रहे हैं और 10 साल तक जंग नहीं होगी। सहाबाए कराम वो पत्थर की सिले नहीं थे, जीते जागते इमोशंस के साथ भरे हुए लोग थे, सेंटीमेंट्स थे, जज्बात थे। उनको काटो चुटकी से दर्द होती थी, उनको थप्पड़ मारो तो दर्द होता था, उनको धक्का दो तो वो गिरते थे, लेकिन इसके बावजूद मट्टी के माधु बन गए। हुदैबिया इसकी मिसाल है। वन साइडेड शराइत, इनका मुसलमान हो जाए तो वो वापस करेंगे, इनका उधर चला गया तो वो वापस नहीं करेंगे। और हज़रत उमर बोल उठे, अल्लाह के नबी आप क्या कर रहे हैं? आप सच्चे नबी नहीं? हूँ। अल्लाह ने आपको हक के साथ नहीं भेजा? जी। अल्लाह के नबी इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं? जी। तो फिर आप क्यों दबरे, अग्रेसिव हो गए? कहा उमर सब्र, उमर सब्र, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। और हज़रत उमर कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का वो वाहिद मौका था कि मेरी आवाज़ नबी से ज़रा सी ऊंची हो गई और मैं बोल उठा। बाद में मैंने कितने गुलाम आज़ाद किए, कितने रोज़े रखे अपने इस गुनाह को माफ़ करवाने के कफ़ारे में। अल्लाह के नबी उनकी हर बात पे करे ओके 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 ओके। अब वो तो फारिग हो गए लोग। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा चलो एहराम खोल दो और हदी के जानवर ज़िबा कर दो, क्योंकि आपको पता नीयत की हुई थी, ये काम तो करना था। वो लोग जो इशारे अबरू को जानते थे, जो समय नवाताना के खूगर थे, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। अब आप अपने ऊपर रहें, आपका बच्चा आपके कहने पे उठ नहीं रहा, हिल नहीं रहा, कितना गुस्सा आता है। फिर जो आप उसको ताने देते हैं कि मैं तेरी माँ और मैंने तुझे इसलिए पाला और ये किया वो किया, और माँ एक नहीं दो नहीं 1400 थे, 1400, कोई नहीं उठ रहा। अल्लाह के नबी के दिल पे बोझ पड़ा, वहाँ से हटे, हुजरे में चले गए। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी की ज़ौजा मुख्तरमा थी, इस बारे में उनका भी नाम लिख लें। कैसी जीरक खातून थी वो। बड़ी लड़ाई और जंग रुक गई थी उनके एक मशवरे से। हमारी माँ थी ना, हमारी माएँ बड़ी समझदार थी, शोहरों को तसल्लियाँ देती थी, जब वो टूट के आते थे तो उनको जोड़ती थी, जब वो जोश और गुस्से में होते थे तो उनको ठंडा करती थी। कहा अल्लाह के नबी छोड़े ना, जैसे आज की माँ कहती बच्चे हैं ना, अल्लाह के नबी ये सदमे में है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम बग़ैर उम्रा किए जाएँ। आप ऐसा कीजिए, आप जाकर इनके सामने अपना एहराम खोलना शुरू कर दें और अपने बाल मुड़ना शुरू करें, देखें क्या होता है। अच्छा चलो। और आपने जो ही ये किया उसके बाद साहबा अपने ऊपर काबू नहीं रख सके। साहबा के लिए ये नामुमकिन था कि नबी कोई काम करे और हम ना करें, नबी को कोई तकलीफ़ हो रही और हम आराम से बैठे हों, नबी परेशान है और हम खुश हैं, नबी के दिमाग दिल पे बोझ है और हम मुतमईन मज़े बैठे हैं, नबी भूखे और हम खा रहे हैं, नबी घर से वे घर बैठा है और हम अपने घरों में मौजें मस्तियां कर रहे हैं। साहबा के दिल इतने बड़े नहीं थे, हमारे बड़े आज। और फिर साहबा ने वही किया जो नबी ने किया, एहराम खोल दिए। फिर इस तेज़ी से एक दूसरे के बाल काट रहे थे, ऐसे लगता था गर्दने काट देंगे। कब वापस चलो, कुछ करते हैं एक और अल्टीमेट, एक और सेंटीमेंटल टाइम। और जब ऊँटनियों के रुख मक्का से मदीने की तरफ गए होंगे तो क्या चीखें नहीं निकली होंगी, क्या आहें नहीं उस आसमान ने और ज़मीन ने सुनी होंगी। और यहाँ मैं आपको वो जुमला कहने लगी हूँ जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को ज़ुबानी याद करवाने की ज़रूरत है। हुदैबिया से हरम शायद 3 किलोमीटर है, 1400 लोग हैं, 1400 नज़र बचा के छुपा के या गुस्सा करके या कह के मैं जा रहा हूँ रोक लें आप मुझे, जैसे जवान बच्चे कभी कभी जोश में आके माँ बाप को कहते हैं आई एम लीविंग, जो का देखी जाएगी। एक सहाबी ने जाके छुपके छुपके से उम्रा नहीं किया, ये नहीं किया। क्यों? इताअत, समय ना बताना नंबर एक, और दूसरी बात क्या, उन्होंने वहाँ जाके ये साबित कर दिया कि इताअत इबादत की 3 किस्मों में एक चीज़ इताअत है। 3 चीज़ों से बंदगी बनती है ना। इताअत का अजर इबादत के रिचुअल्स की अदायगी से ज़्यादा है। बात माना करो अल्लाह के बंदो, बात माना करो अल्लाह की। तरावियाँ 8 पढ़ के तुमने 8 रकत क़यामुल्लैल भी कर लिया है, बात तो तुमने माननी कोई नहीं। फिर एक शादी आ गई तो तुमने फिर अल्लाह से ऐसे दूर हो जाने जैसे कि होने का कहना चाहिए कि हक नहीं है, सहाबा नहीं गए। ये है लीडरशिप, ये है इमामत, इमारत, अमीर और मामूर के ताल्लुकात, ये है रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड बाय करना, ये है वो दीन था जिसकी वजह से सहाबा ने तारीखें बनाई, वो तारीख साज बने, हम खुद साज थे। अगर वो चाहते तो वहाँ हमीयतुल जाहिलिया का इजहार करते। अब देखिए कि सहाबा किराम ने एक सिरात मुस्तकीम पाली थी और वो ये थी कि इन्हीं के नक्शे पे चलना है। वो दुश्मनों के हाथ से महफूज हो गए थे, वो ज़मीन पे अल्लाह के दीन के नुमाइंदे बन गए थे। उन्होंने वो फतेह मुबीन हासिल की थी कि बग़ैर लड़ाई के अभी मक्का से मदीना की तरफ रुख हुआ, अल्लाह के नबी अपनी ऊँटनी पे हैं और आप पे वही की कैफियत आ रही हुई और सूरत फतह नाजिल होती है। और सहाबी आज भी हदीस में पढ़े हैं कि वो जब हदीस बयान करते हैं ना तो कहते हैं अल्लाह के नबी जब पढ़ रहे थे ना, इन्ना फतहना लक फतहन, यानी सवारी पे बैठे हुए जो आवाज़ की उतार चढ़ाव ना नबी की आवाज़ में वो थे। सहाबा कहते हैं या तो हार के जा रहे हैं, ये कोई जीत है? लेकिन 2 साल से कम के अरसे में पता चल गया नबी की लीडरशिप ने और नबी की हिकमत और आपकी फरासत ने हुदैबिया की शरायत में फतेह मक्का ढूंढ ली थी। ये है असल में ऐसे लीडर्स की ज़रूरत। तो याद रखिए सहाबा का वो अमल जिसकी वजह से वो अल्लाह की रहमतों और उसकी नुसरत के हकदार हुए या कह लीजिए मुस्तहिक हुए, वो क्या थी? इस जाललज़ीन कफरू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमीयतु हमीयतुल जाहिलिया, जाहिलियत की हिमायत की बजाय उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। कोई रिएक्शन शो नहीं किया। हम जाके मस्जिद आयशा से उमरे करते फिरें, हम 20 दिन में 22 उमरे कर लें, कर लीजिए आपकी मर्ज़ी, अगर आपकी सोच और आपकी फिक्र में ठीक है तो कर लीजिए, ये कोई झगड़े बहस की बातें नहीं होती। लेकिन ये याद रखिए इताअत का अजर इबादत के अजर से ज़्यादा है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को कहा कि फ़लाँ जगह कूच कर जाओ, एक काफ़िला जा रहा था, उसके बाद आपने नफिल शुरू कर दिए। जब आपने सलाम फेरी तो एक सहाबी आपके पीछे नफिल पढ़ रहे हैं, कहा आप नहीं गए? कहा अल्लाह के नबी मेरी सवारी बड़ी अच्छी है, मुझे लगता था कि मैं उनसे बात भी निकलूँगा तो उनको मिल जाऊँगा, तो मैं आपके पीछे नफिल पढ़ने का अजर क्यों छोड़ूँ? आपने फरमाया अब तुम जाओगे तो कभी उनके अजर को नहीं पहुँचोगे। ग़ज़वे कुरैज़ा का मौका, अल्लाह के नबी ने कहा तुम में से कोई ऐसा ना हो कि जो कुरैज़ा की घड़ियों में जाकर असर की नमाज़ पढ़े। मुराद क्या था? फ़ौरन कूच कर जो लोग निकले, असर का वक्त रास्ते में आना था, आ गया। कुछ ने कहा नो 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 नो, नबी ने कहा था कुरैज़ा की घड़ियों में पढ़ेंगे हम तो वहीं पढ़ेंगे। कुछ ने कहा वो तो मुराद ये था कि निकल पड़ो, और वो हम निकल पड़े, हम तो इधर ही पढ़ेंगे क्योंकि नमाज़ फ़र्ज़ है और सलातुल वुस्ता है। इन्होंने फ़ौरन पढ़ ली। बाद में अल्लाह के नबी के सामने मामला पेश हुआ, आपने कहा दोनों ने ठीक किया। असल बात इताअत थी, समय ना बताना। तो याद रखिए कि हम आज जाहिलियत के रस्म व रिवाज नहीं छोड़ते। आज तक हमसे मेहंदी उपटन की रस्में और अब उसमें कई 10 किस्म के खुराफात लल गए, ये नहीं छूट रहे। डांस भी आ गए, लड़के लड़कियों का नाचना भी आ गया, दूल्हा दुल्हन का खुद नाचना भी आ गया, शादी से एक दिन पहले रिहर्सल भी आ गई। इधर नहीं आई, कराची की शादियों में मैं नहीं मानती, मेरा गुमान है आप लोगों से अच्छा आ गई है, मुबारक हो, आप भी तरक्की के जीनों पे चढ़ गए हैं। यानी शादी से एक दिन पहले क्या हो रहा है, कहीं की बात है तो उन्होंने कहा कि वो वहाँ रिहर्सल हो रही है, ये कोई फिल्म है, शूटिंग है, अभी निकाह नहीं हुआ बता। तो वो वहाँ बैठ के जो डांस करना है ना अगले दिन शादी के बाद, तो उसकी तैयारियाँ कर रही हैं लड़की लड़का, और वो सहेलियाँ सहेले तो पहले ही होते थे। याद रखिए सूरत का एक मेन लफ्ज़ आपको मैं अब दे के तर्जमा शुरू करने लगी, लफ्ज़ सकीना। सकीनत उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह रसूल के नक्शे पा पे चलते हैं। अल्लाह ने सहाबा को रदी अल्लाह अनहुम का जो लक़ब दिया ना, उससे पहले उनको सकीनत दी थी। मोमिन की ज़िंदगी में सुकून है, टेंशन फ्री है। आपने जितनी मुश्किलात ज़िंदगी में डाल ली है ना, उतने आप बेआराम हो गए। और इसी मौके पे वो वक्त भी आया था कि जब ट्रीटी साइन हो रही थी माहते पे, तो आपने लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उन्होंने एतराज़ कर दिया। ये क्या होता है, अल्लाह हम रहमान रहीम को तो मानते नहीं, बिस्मी कल्ला हुमा लिखें। आपने कहा छोड़ो क्या बहस करनी, जाओ लिख दो, बिस्मी कल्ला लिखा दिया। आगे लिखा हुआ था मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगे लो सारा झगड़ा ही तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह का, हम आपको अगर रसूल मान जाए तो फिर हम आपको रोके क्यों, इस लफ्ज़ को काटिए आपके नाम के आगे। सहाबा की जुरत, उन्होंने कहा खबरदार किसी ने ये नाम लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अली ये मेरे नाम के आगे से लफ्ज़ रसूलुल्लाह किधर लिखा हुआ, इसको काट दो। कहा अल्लाह के नबी मेरी तो जरूरत नहीं है। कहा अच्छा मुझे बताओ किधर है, क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं थे। कहा ये है मोहम्मद का रसूल और अल्लाह, आपने अपने दस्ते मुबारक से उसको वाइपआउट कर दिया। कुरैश फिर भी नहीं माने, आपको पता है, कहने लगे जाओ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। ये जिगर को फाड़ने वाली बातें होती हैं उन साथियों के लिए जो प्यार करते हैं अपने लीडर से। क्या आप हमारे लीडर को ये समझते हैं? लेकिन अल्लाह ने सहाबा के सीनों पे सकीनत, दिलों पे सुकून, इन ना चाहने वाली वन साइडेड शराइत पे राजी होने को अल्लाह ने यहाँ सकीना कह दिया। हमियतुल जाहिलिया छोड़ दीजिए, आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। और फिर जब वो अबू जुंदल सामने आते हैं, और अल्लाह के नबी का इम्तिहान है, अभी मुआहदे के साइन नहीं हुए, सिर्फ वर्बली बात हुई है, तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बाप की बेड़ियों में से निकल कर आए, बाप ने उनको कैद करके जल्लाद छोड़े हुए थे कि मरवाओ, ये किससे पढ़ा करें। आप सुराही को मखतूम खोलिए, उसमें सुलह हदैबिया का टॉपिक पढ़िए, लिख ले अपने कामों में, फिर पढ़िएगा। तो सहाबा किराम की शख्सियत का ये एक अनोखा असूल था कि वो इश्तियाल अंगेजी के बावजूद मुश्तइल नहीं होते थे, जारहियत के बावजूद जवाबी कार्रवाई नहीं करते थे, उमरे को वक्कार का मसला बनाए बगैर वो हुदैबिया से वापस आगे राजी हो गए, और उन्होंने वन साइडेड शराइत को मानकर जंग की हालत को अमन की हालत में बदल दिया, और नाकाबले बयान हालात में बर्दाश्त की आखिरी हद रखी। किसी ने कुछ ना किया और मुखालिफीन की हमीयत जाहिल, वो जाहिलियत की हिमायत कर रहे थे, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिमायत करके अपने आप को लौटाया। आपको बता अल्लाह को सहाबा का ये रवैया कितना प्यारा लगा कि फिर उसके बाद अल्लाह ने ऐसे रास्ते खोले कि इन साथियों के लिए मुमकिन हुआ कि मक्का को फतह कर लें। यहूद की जड़ें भी इसके बाद ही कटी, और तबलीग की सूरत में पूरे अरब में नबी सल्लम बादशाहों को खतूत देकर दावत का मैदान भी खोलते हैं। तो ये सूरत अब पढ़ने लगे हैं, बस आपको उसका एक कोना ही दिया मैंने। आइए देखते हैं कि अब आज मेरे और आपके लिए इसमें क्या है। एक एक लफ्ज़ पे गौर करिएगा तर्जमे के दौरान। 48 नंबर की सूरह है, 29 आयते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में एक इन्ना फतहना लक फतह मुबीना लियगफिर लकल्लाहुमा तकद्दम मिन ज़म्बिक वमा तअख्खर वमा तअख्खर वयुतिम्म नेमतहु अलैक वयहदियक सिरातम मुस्तकीमा। फिलहाल 4 दिन में ये आयत पढ़ी थी हमने, 4 दिन में, मेरा गुमान है शायद इससे भी ज़्यादा हो। हदीस सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत 4281। मुआविया बिन कुर्रा कहते हैं, अबू मखफल से सुनते हैं, कहते हैं मैंने देखा कि अल्लाह के नबी फ़तेह मक्का के मौके पर अपने ऊँट पर सवार हैं और खुश इल्हानी के साथ सूरत फ़तह की तिलावत फरमा रहे हैं। मुआविया ने कहा अगर इसका ख़तरा ना होता कि लोग मुझे घेर लेंगे तो मैं भी इसी तरह तिलावत करके दिखाता जैसे अब्दुल्ला बिन मक्फल ने पढ़कर सुनाया, वही टोन जैसे हिलते हुए। यानी उस दिन लोगों को समझ आया कि मक्का फतह हुआ नहीं, सुलह हुदैबिया असल में फतह थी। अल्लाह अकबर। तो रुकू नंबर 9 है, 1 से 10 आयत। फतह और गलबा अल्लाह के हाथ में है। इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना, बेशक नबी हमने आपको एक खुल्लम खुला फतह दी है ताकि जो कुछ आपसे लग्जिशें आगे हुई और पीछे सबको अल्लाह माफ़ फरमाए और आप पर अपना एहसान कर दे और आपको सीधी राह पर चला दे और आपको एक ज़बरदस्त मदद दे। वही है जिसने मुसलमानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान डाल दिया ताकि अपने ईमान के साथ ही साथ और भी ईमान में बढ़ जाएं। और आसमानों और ज़मीन के कुल लश्कर अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ताला दाना व हिकमत है ताकि मोमिन मर्दों और औरतों को इन जन्नतों में ले जाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे, और इनसे इनके गुनाह दूर कर दे, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ताकि इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुशरिक मर्दों और मुशरिका औरतों को अजाब दे जो अल्लाह के बारे में बदगुमानियाँ रखने वाले हैं। दरअसल इन्हीं पर बुराई का फेरा है, अल्लाह इन पर नाराज़ हुआ और इन्हें लानत की और इनके लिए दोजख तैयार की और वो बहुत बुरी जगह है लौटने की। और अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन के लश्कर, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। यकीनन हमने ही आपको गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, ताकि मुसलमानों तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और इसकी मदद करो और इसका अदब करो और अल्लाह की बाकी बयान करो सुबह शाम। जो लोग आपसे बैत करते हैं वो यकीनन अल्लाह से बैत करते हैं, उसी बैत की तरफ इशारा। इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है और जो अहद शिकनी करे वो अपने नफ्स पर ही अहद शिकनी करता है। और जो शख्स इस इकरार को पूरा करे जो इसने अल्लाह के साथ किया, तो इसे अन करीब अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देगा। रिवायत है मुगीरा बिन शोबा से, अल्लाह के नबी नमाज में रात भर खड़े रहे यहाँ तक कि आपके दोनों पाँव सूज गए। लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी, आपकी तो अगली पिछली खताएं माफ़ हो चुकी। आयत नंबर 2 में पढ़ के आए ना, लियाग़फ़िरा, उस पे है ये बात। तो उस पे आपने कहा था, फ़ला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ। ये बुखारी की रवायत है 4836। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम की इबादतें शुक्रगुजारी के लिए थी, ना कि गुनाहों की माफ़ी के लिए। फिर सुलह हुदैबिया से क्या खैर मिली? नंबर 1, मुसलमानों की तादाद में इजाफा हुआ, अल्लाह की नेमत पूरी हुई इन पे, फतेह मक्का का पेश खैमा बनती है सुलह हुदैबिया, सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई की गई, गुनाहों की माफ़ी मिली और अल्लाह की ज़बरदस्त मदद भी आई। फिर इसी तरह सहाबे कराम पे एक अजीब सकीनत क्यों थी? आपके अपने बच्चे नहीं आपसे संभलते? देखिए, अल्लाह ना करे घरों में झगड़े हों, लेकिन कोई एक जवान बच्चा ज़रा सा तेज़ है गुस्से का, सोबत भी ख़राब हो रही है, जब वो गुस्से में आ जाता है तो क्या होता है? जब बाप बेटे में झगड़ा शुरू हो जाता है तो आपके दिल की क्या कैफियत होती है? अब दोनों में से कोई एक गया, 1400 सहाबी और पुरसकून, अंदर से पेचोताप खा रहे हैं। देखिए, बाप गलत फैसला करे ना तो बच्चे पाँव पटकते हैं, मुठियाँ भीगते हैं, आगे माँ को कहते हैं अब्बा को समझाएं। ये क्या करते हैं, इनको समझ नहीं है? इन्हें क्या आप घर बैठा करें, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं दुकान पे जाने की, हम हैं ना। देखिए ना, कल भी इन्होंने मैं शर्मिंदा करा दिया, गला नहीं छोड़ते और पैसे अपने हाथ में रखते हैं, चेकबुक इनकी है ना। साहबे कराम पुरसकून, रिलैक्स, कूल, खाम, क्वाइट, ये सकीनत थी। क्यों थी ज़रा सा इसको देखिएगा, इस तराब के बावजूद नबी सल्लम को नहीं छोड़ा। लिखिए, ये है नाजुक लम्हे जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस टूट जाती हैं, जहाँ लोग अलग हो जाते हैं, जहाँ लोग छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ बड़े बड़े इत्तेहाद और एग्रीमेंट और वॉलंटियर फॉर्म बेकार हो जाते हैं, जहाँ लोग कहते हैं मैं आपके साथ नहीं चल सकती। ये है जिस पे लोग कहते हैं हम आए तो बड़े शौक और अरमानों से, तो लोग ने हमारी कदर नहीं की। जहाँ लोग कहते हैं आई एम एट माई ओन, मैं अकेले कर लूँगी, थोड़ा करूँगी, अपना करूँगी, मेरे से नहीं ये पूरी इज्तमाहियत और सारे इतने लंबे फैसले और इतनी शरायत और इतने साइन कराऊँ, ना ना, मेरे से नहीं होता, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। और आज 80% दीन का काम करने वाले यही कर रहे हैं। ये जुमला लिख के रख ले, ज़िंदगी में कभी आपके काम आएगा? आपको अल्लाह लंबी उम्रें दे, 70-80 साल की उम्र तक भी आप आखिरी दिन तक अकेले दीन की खिदमत के नाम पे कुछ करते रहें, वो नतायज नहीं निकलेंगे जो सिर्फ़ 1 या 2 साल किसी जमात, किसी गिरोह, जमात से मेरा फ़िरका नहीं है, प्लेटफॉर्म जो पेश करते हैं, जो चीज़ें आपके लिए सर्व करके देते हैं, जो आपको रूल्स बना के देते हैं, स्केल्टन है छोटे छोटे, वो उन्होंने आपके लिए ढांचे बनाए हैं कि इसमें 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 ये कर ले वो कर ले, आपकी सिर्फ 2 साल की कोशिशों से जो नतायज निकलेंगे ना, वो आप खुद गवाही देंगे कि 10-20 साल में नहीं निकले। हाँ, अकेले में एक बहुत फ़ायदा होता है, सेल्फ प्रोजेक्शन, नाम आपका होता है ना, ये आपका काम है, ये मेरी क्लास है। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा फ्लायर पे अपना नाम देख के लगता है, सच बता रही हूँ। मैं सामने बैठी हूँ, पीछे और भी तो इतने लोग हैं, उनके भी तो लिखो, तो मेरा भी लिख दो। सिर्फ फ्लायर पे नाम तब लिखने शुरू हुए जब बाहर के ट्रिप्स शुरू होते थे ना, जैसे यूरोप में इधर उधर गए हैं, तो वो कहते थे स्पीकर के नाम के पर हम फ्लायर आपका कैसे अप्रूव करें? कुछ तो होगा ना, कोई तो बंदा बंदी है ना। तो फिर इन्होंने लिखना शुरू किया, आप अमेरिका के जितने फ्लायर हैं देख लें, कोई नाम नहीं दिखेगा, ऑनलाइन जितने कोर्सेज हैं नाम नहीं दिखता। अगर है भी तो मेरी केयर ही नहीं, मुझे आई डोंट माइंड, मुझे पता है कि मेरे साथ उसमें एक पूरी टीम होती है। इस दौरे कुरान में कौन है? क्या ये मेरे अकेले की कोशिशों का कोई नतीजा निकलता है ये आपके पास? ये नतीजे नहीं निकलते अकेले में, सहाबा ने नबी का साथ नहीं छोड़ा। आज हम बात बात पे पाँव पटक के जूतियाँ उठाकर निकल जाते हैं कि संभालो, फिर अगले दिन हम होते ही नहीं अपनी जगह पे, पता चला हम या कहीं और लग गए जिधर हमें ज़रा सहूलतें मिली, या हम अकेले हैं। और अकेले काम करने में मज़ा बड़ा आता है, ये मैं आपको बता दूँ, फ़ायदे ज़्यादा नहीं होते। आपको भी फिर दोबारा साथी चाहिए होंगे, फिर आप उन्हीं ग्रुपों में से साथी ढूंढते हैं, फिर आप उन्हीं लिस्टों को कॉल करते हैं, हमारी क्लास में आइए ना, हमने भी तो शुरू, वो कहते नहीं हम तो उस कोर्स में, नहीं, वो भी तो ठीक है लेकिन उनके रूल्स काफ़ी सख्त नहीं है, और हाँ वो इदारे इंस्टीट्यूट है उधर तो फीसें भी है, उनके तो खर्चे हैं, हम तो आपको फ्री दे रहे हैं। फिर ऐसे जोड़ तोड़ शुरू होता है। अगर सहाबा ने नबी का साथ छोड़ना होता, बदर में नहीं, ओहद में नहीं, खंदक में नहीं, खैबर में नहीं, सहाबा छोड़ते तो वहाँ खड़े खड़े नबी को अकेला छोड़ के 1400 निकल जाते, वो हुदैबिया का मुकाम था। जहाँ फतुहात हो रही होती है ना, कामयाबियाँ हो रही होती हैं, वहाँ एनर्जी मिलती है, वहाँ नहीं छोड़ते लोग लीडर्स को, वहाँ तो खुश होते, कहते बहुत शुक्रिया आपने गाइड किया, अंडर दी सुपरविजन आपकी, ये वो मसला बहुत है, जहाँ नतायज ऐसे निकले जैसे हुदैबिया वाले। पिकनिक में आप जाते हैं, बड़े खुशी खुशी जाते हैं, समंदर पे जाते हैं, कितने शौक से जाते हैं, सारा दिन वहाँ गुजारे, थक टूट के आते हैं ना, कपड़ों में रेत भरी हुई है, थके, वापसी पे जो क्रैंकी बच्चे उठाकर आप लाते हैं और वो रोते धोते आते हैं, और आप कहते बिस्तर में नहीं जाना, पहले नहाओ, ये रेत कौन निकालेगा कपड़ों में से, थकन, तकलीफ, आजमाइश, भूख, प्यास, चलो वापस। और कोई रिटर्न फ्लाइट नहीं थी कि जिसमें बड़ा अच्छा फ्री पैकेज था साथ फूड का। मैं सोचती हूँ सहाबा के वो कदम मन मन भर के नहीं होंगे जो मक्का से मदीना की तरफ थे, देखिए मदीना से जब मक्का आ रहे थे ना तो शौक के कदम थे, ज़ौक के कदम थे, काबा करीब। आज हम भी जाते हैं तो कितने प्यार से जाते हैं, हाय दिल उछल रहा होता है जल्दी करे कि हाँ इतना टाइम, इतना टाइम से जद्दा आ रहा है, जद्दे से मक्का आ रहा है। अच्छा जब वापस आते हैं तो आज हमारा कदम बदल नहीं होते, सारा कुछ करके आते हैं फिर भी कहते हैं नहीं की नहीं हुई, हाय तवाफ कम किए, हाय जमजम नहीं पिया, अच्छा मैं एक और तवाफ कर रहा हूँ मियाँ जी घूरते हुए, नहीं, चल रही हूँ, वो कहेंगे तुमने लगता है कोई शॉपिंग करनी है, बस एक तवाफ कर रहा हूँ, हाय शायद मुझे खतीम में जगह मिल जाए, हाय मैं स्पोसा ले लूँ, शायद हिजरे अस्वद को छू लूँ, करते हैं ना। आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए साहबा के वो कदम जो बैक टू दी मदीना थे, वो कैसे वो जल कदम थे, लेकिन ये सकीना है, और अल्लाह ये सकीना दे दे आप जुड़ गए, आप देखिए कि आपके तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। ये रदी अल्लाह अन्हो का लकब इतना आसान नहीं है, माफ़ कर दे मुझे, जब इस पारे पे हम पहुंच गए हैं, आपने अभी तक कोई एक पारे में एक आयत में ये नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने सहाबा से राजी होने का लकब उनको उनकी नमाज पे दिया है, हालांकि वो पढ़ते थे, लेकिन आपको मिला। ये नमाज रोज़ा ही तो काबिल करता है इसके कि अल्लाह के बंदे बनाओ, साहबा की रातों की नमाजें ना होती, तहज्जुदें ना होती, नफिल रोज़े ना होते तो वो इतनी सकीनत पे भी ना होते। तो बहरहाल फिर नबी की कुफार की शरायत को मानने के बावजूद चुप रहे, अपनी महदूदियत को जानते थे, लीडरशिप पे भरोसा था कि ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये कोई पैसा अगर लगा रहे हैं तो कोई ऐसे नहीं लगा रहे, एक लगा रहे हैं इसमें से इनको 20 निकलने हैं, ये अगर वक्त लगा रहे हैं तो ऐसे नहीं जान छुड़ा के नहीं वहाँ बैठ के सो गए जाके, वो इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ फ़ायदा हो रहा है, इधर फ़ायदा कोई नहीं होना, ये ट्रस्ट बहुत बड़ा होता है टीम बिल्डिंग में। और अगर ये हमसे कुछ कहते हैं ये ले लो ये दे दो, तो इसके पीछे कोई हिकमत है, हम लोगों को बुरा कहते हैं लेकिन कमी हमारे अपने अंदर होती है। फिर इसी तरह अल्लाह की खातिर कुफार के आगे दबे नहीं, और अगली बार मामला समझ आया कि नहीं आया, फिर भी नबी की इताअत की, अल्लाह हमें ऐसा बना दे। सूरत फत क्या 4 पे एक रिवायत ले लीजिए, साहबा ने जब अल्लाह के नबी को मुबारक दी तो और पूछा अल्लाह के नबी हमारे लिए क्या है, आपके तो अल्लाह ने गुनाह माफ़ कर दिए ना, लियाग़फ़िरु लक, तो हमारे लिए सूरत में क्या है, तो अल्लाह ने आयत उतारी कि मोमिन मर्द औरत जन्नतों में जाएंगे, कि जिसमें नहरों की बात है और रहने की बात है और गुनाह और बुराइयाँ दूर करने की बात है, यानी सहाबा को पता था कि कुरान जब उतरता है ना तो इसमें कुछ ना कुछ बात हमारे लिए भी होती है। फिर आयत 9 पे एक देखिए कि सहाबा कराम की अल्लाह की दावत पे लब्बाई क्यों थी, कैसे थी। नंबर एक, ईमान भी अल्लाह में पुख्ता थे, ईमान भी रसूल में पुख्ता थे, और नबी की मदद करना उनकी ज़िंदगी का मिशन था, और सबसे बढ़ के दिलो जान से नबी की इज्जत और एहतराम करते थे। हमारे दिलों में जब इज्जत कम होती है ना, एहतराम कम होता है, याद रखे उसके बाद काम कम होगा, मदद कम होगी, हम केयर ही नहीं करेंगे, नोटिस नहीं लेते। आपको किसी बंदे केयर नहीं है तो आप उसका मैसेज देख कर रिप्लाई करेंगे, फारिग होंगी तो कर दूंगी, मिस कॉल देखी आपने, आप दोबारा करेंगे उसको, ये साबित करता है कि आपके दिल में इज्जत नहीं। और अगर आपके फोन पे आ जाएगा किसी की कॉल, किसका नाम लूं मैं, जिसको आप किसी को बहुत बड़ा समझते हो, हाथ पांव नहीं पड़ जाते, नमाज में फोन उठा लेंगे, क्योंकि इज्जत भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है। तो सहाबा कराम ने अल्लाह की मदद की और बढ़ के इज्जत की। फिर असहाबुल बैत, ये जो बैत की थी, चारों खुलफाए राशिदीन थे उसमें बैत का लफ्ज़। फिर इसी तरह से सहाबा अशरे मुबशरा थे, उन्होंने इसमें मदद की, यानी इस बैत में कौन कौन थे, 313 बदरी सहाबा भी इसमें आ गए, चार खुलफाए राशिदीन भी आ गए, 10 अशरे मुबशरा भी आ गए, इनको माइनस करके बाकी में 1400 को पूरा कर लीजिए। ये थे सहाबे बैत रिजवान। आपने मैंने क्या सीखा, अल्लाह के दीन को गालिब करने की जिद्दोजहद करनी है, बेहतरीन मदद अल्लाह की मदद को जानना है, दिल में ईमान भरना है ताकि सुकून आए, और ये यकीन रखना है कि अल्लाह अपने लश्करों से सच्चे ईमान वालों की मदद कराता है, दाई लल्लाह की मदद और अदब करना है, और अहद शिकनी से बचना है। आगे है जी आयत नंबर 11 से 17, रुकू नंबर 10, अमल किए बगैर फ़ायदा लेने की हवस रखना। सयकूलु लकल मुखल्लफून मिनल अराब, हर सूरत की तरह जिसमें जंगों का जिक्र आया, अमली कोशिशों का जिक्र आया, उस मैंड पे मुनाफिकीन का तस्करा। हुदैबिया में भी वो लोग नहीं जा सके थे जिनको जान प्यारी थी, जिनको तन प्यारा था, मन प्यारा था। अब हुआ क्या कि इसके फौरन बाद, यानी सन 6 में थी ना, तो सन 7 हिजरी में खैबर की जंग आई। अब खैबर की ज़मीन तो आप ऐसे सोच लेना कि जैसे मुंह में पानी आ जाए, ज़मीनें भी हैं और बागात भी हैं और उधर की फर्टाइल लैंड्स थी, सब ने जाना चाह। अल्लाह के नबी ने उस दिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कोटा सिस्टम, खबरदार कोई एक बंदा नहीं जाएगा हमारे साथ। कौन? जो हुदैबिया के सफ़र में हमारे साथ नहीं था। ये है वो वक्त जब आपको मुराद मिलने लग जाएंगी, और मिलेंगी आपको, देखिएगा। पहले सारा दे दें, फिर सारा मिलेगा, और ज़रबे लग के, तकसीमों के साथ नहीं, ज़रबों के साथ मिलता है। साहबा ने अपना सब कुछ दे दिया तो अल्लाह ने उनको वो दिया जिसको वो सोचते भी नहीं थे। बंदा कहता है अल्लाह बाकी भी ना दे देता, इतनी कीमत लगनी थी मेरी चीज़ की। आप देखिए, जिसे मोहब्बत होती है ना, उसकी चीज़ से भी मोहब्बत होती है। आज अगर अल्लाह के नबी का कुर्ता आ जाए दुनिया में और उसको लगा दें कोई लोग कि ज़रा इसकी कीमत तो लगाओ, क्या लगाएंगे आप मुसलमान? रियल में वो नबी का कुर्ता हो, पहना भी हो, तन पे लगा भी हो। लोग कभी बाल मुए मुबारक के नाम पे लेके फिरते हैं, और कोई मसे नबी की वो बुक शेल्फ में से एक बाल लेकर आ गई, बड़ी इज्जत से रख रही हैं, रख रही हैं, छुपा रही हैं, भाई क्या हुआ? कहती मुझे नबी का बाल मिला। तो ये मस्जिद नबी, इसका रैग उस वक्त था, पता नहीं किसी मजदूर का ही बाल होगा। लेकिन अगर नबी का बाल आ जाए, नबी के कपड़े आ जाए, क्या वैल्यू होगी हमारे पास, लाखों करोड़ों में। पिछले दिनों एक लीडर ने एक शर्ट पे साइन कर दिए तो पता चला कई करोड़ की वो शर्ट बिक रही है, नीलामी होती है ऐसी चीज़ों की। ये तो सोवेनियर्स हैं। आज नबी के कुर्ते को हम अरबों डॉलर में भी ख़रीद लेंगे, ये मेरा ईमान है। उम्मत मुस्लिमा के लोग आज भी नबी से इतना प्यार करते हैं, वो आपकी पगड़ी, आपकी जूती, उसको लेकर तुर्की के नहीं, सऊदी अरब में खाना काबा के ऊपर एक शोकेस लगा के उसमें भी रख देंगे, डजंट मैटर। लेकिन फिर जाकर करेंगे वही जो करते हैं। यहाँ आप सुनिए इस सारी बात में, देहातियों में जो लोग पीछे छोड़ दिए गए थे, वो आपसे अब आकर कहेंगे हम अपने माल और बाल बच्चों में लगे रहे ना, वही बहाने, वही उजर, शगलत नाम वालुना, हाय क्या करे, घर जान नहीं छोड़ते, बच्चे छोटे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, कैसे दीन के काम करें? कोई बात आपको आज से फ़र्क लगती? हाँ, बस आप हमारे लिए मगफरत तलब कीजिए, बस हमारे लिए दुआ किया करें। क्या दुआ करें कि अल्लाह आपको हिदायत दे, आपको अपना सूदो जियां समझ आए? अल्लाह ने आपको शाही नौकरी दी, बादशाही नौकरियां दी, और आप फकीरों की नौकरी करते हैं, ये पेट की पूजा करते हैं। कुछ डॉलर, कुछ पौंड, कुछ रुपए, कुछ करोन के बदले तुम करोड़ों की नेकियों के मौके पीछे डाल देते हो, तुम्हें फिर अल्लाह इस्तकामत दे तो कैसे दे? और फिर एक एक करके सब छूट जाता है, ये भी लिख लें, जो कुछ ले रहे होते हैं वो सब छूटता है, जो देने वाले होते हैं ना वो लेना भी छोड़ चुके होते हैं। ये डोरी से बंधे रहे, वल्लाह जिस दिन ये डोरी छोड़ दी वो मुंह के बर गिलता बंदा। कहते थे हाँ बस माफ़ कर दें, अल्लाह कमेंट दे रहे हैं, ये लोग अपनी ज़ुबानों से वो कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं है, झूठ बोलते हैं। आप जवाब दीजिए, तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज़ का भी इख्तियार कौन रखता है? اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے. یعنی ڈونٹ ڈیسیو اس, دھوکہ نہ دو. نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ آنا ہی ممکن نہیں ہے. چور پکڑا گیا. اللہ کہتے تم اس لیے حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے تھے کہ تمہیں پتہ تھا انہوں نے کفار کی تلواروں سے بچ کے نہیں آنا, اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا. دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاکت والے, اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے بھی ایسے کفار کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے, اور زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے, جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. جب تم غنیمتیں لینے جاؤ گے, وہی جو پیچھے عذر بہانے کر کے سچے بن رہے تھے نا, بالکل تبوک کی جنگ یاد آ رہی ہوگی آپ کو. وہاں کہہ رہے نہیں اللہ کے نبی, بس بچے اور گھر, دل تمہارا آپ میں ہی پڑا رہتا ہے, یاد تو آپ بڑے آتے ہیں, ہم آپ کو بڑا یاد کرتے ہیں. بھائی غیب کی خبریں آتی ہیں کہ آپ یاد کر رہے ہیں. یہ خط پتر یہ کس لیے ہیں؟ کبوتر بھی نہیں رہے آج کل. کوئی پیغام, کوئی سندیسہ, کوئی میسیج ہے تمہارا اپنے پاس کہ جس سے تم کسی کو بتا سکو کہ تمہیں اس سے پیار ہے, تمہیں اس سے محبت ہے, تمہیں اس کی ضرورت ہے؟ کوئی ایک لفظ, ایک جملہ ہے تمہارا کہ تمہیں ہے؟ وہ تو نہیں تھا. لیکن اب دیکھیے خیبر کی جنگ ہے یہ ساری. اب پتا تھا کہ جو ادھر جائیں گے عرب پتی بن کے آئیں گے, یہ تو کوئی بزنس ڈیل ہے. تو کہنے لگے نا اللہ کے نبی ہمیں بھی تو اجازت دیجئے نا, ہمارا بڑا دل کرتا ہے ہم اس سفر میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. چلیے. ہاں نہیں نہیں شغلت نام والو نا واب گرو نرمت. کیا نہیں لگتا یہ سچ ہے؟ یہ باتیں برداشت نہیں ہوتی کمزور دل لوگوں سے. یہ صورتیں نہ سنا کریں وہ لوگ جن کے دل کمزور ہیں, جن کے ایمان کمزور ہیں. تب سنیے, یہ لوگ کہنے لگیں گے ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیجئے. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے. وہ اس کا جواب دیں گے نہیں نہیں بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو. یعنی ڈسکریمنیشن ہے ادھر. بھائی اس ادارے میں تو چند لوگوں کی مناپلی ہے, کرتے بھی کچھ نہیں پھر بھی انہی کے نام ہے. ہم اتنا کرتے ہیں ہمارا تو کوئی نام بھی نہیں لیتا. بس چھوڑے چھوڑے ہم تو نیکیوں کے لیے لگے ہوئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں. آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ ان قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے منہ پھیر چکے ہو تو تمہیں دردناک عذاب دے گا. کیا مزے کی بات آ گئی ادھر, سمجھ آئیے؟ ادھر تو نہیں ہم تمہیں لے کے جائیں گے. ہاں وہ ایک اور بڑی سخت لڑاکو کام تھی, اگلی ایک اور جنگ تھی اس کی طرف اشارہ ہے. ہاں ہم وہاں تمہیں لے جائیں گے. بھائی وہاں انہوں نے کیا کرنے جانا ہے؟ یہ تو آئس کریم کھانے والے, سنیکنگ کرنے والا گروہ ہے. یہ تو واپسی پہ گفٹس لے کے آنے والے گروپ میں سے ہیں. آپ ان کو ادھر لے کے جا رہے ہیں جہاں لڑائیاں اور تلواریں چلنی ہیں. دیکھیے اللہ کو بندے کے دل کا پتہ نا. تو یاد رکھیے جو تنگیوں میں تکلیفوں میں ساتھ دیتے ہیں نا, ایک دن پھر ان کو سیروں میں فن پلیکس میں کھانے پینے میں بھی ساتھ جانے کا موقع مل جاتا ہے. اور یہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لوگ آپ کی تکلیفوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ مزے کر رہے ہوتے ہیں, مزے لے رہے ہیں. آپ کو وہ کچھ مل رہا ہے جو دوسروں کو نہیں ملتا, اور جو بہانے کر کے شروع میں پیچھے رہ گئے وہ پھر پیچھے ہی رہ گئے. ہاں کچھ لوگ گزر والے ہیں, وہ کون؟ اندھے پر کوئی حرج نہیں, نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے, نہ بیمار پر کوئی حرج ہے. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں, اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا. آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ برے گمان کو اچھا نہیں سمجھنا, دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے دین کو نہیں اپنانا, مصیبت کے وقت دین کے کام کو نہیں چھوڑنا, دین میں مشقت سے بچنے کے لیے بہانے نہیں بنانے, اللہ کے حکموں سے منہ نہیں موڑنا. سچے مومن کی طرح جو دل میں بات ہو وہ زبان پھیلانی ہے, یعنی جھوٹی سچی محبتوں کے دعوے نہیں کرنے. اگر جرت ہے تو کہی آج کہ آئی واز رانگ, اٹس مائی پلے, اٹس مائی فالٹ, میں نے جو کیا میں اس سے معافی مانگتی ہوں. جس دن آپ نے یہ مان لیا نا اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا آپ کے اور میرے اوپر.